समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है जयंती। तो श्रोताओं, परिक्रमा के अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। दिस इज शगुन चोपड़ा विद मुकेश एज ही सेड, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज एंड आई कांट गो फर्दर विदाउट शेयरिंग अ क्वोट मुकेश
जी।
गर्ल्स आर नॉट जस्ट डॉटर्स, they are the architects of a better tomorrow. Well, more on that in our segment Dateline India. We also have business news, capsules, reports, tributes and much more. All of this and more coming up, so make sure listeners to stick around till the end. But first things first, we'll begin with the headlines. Prime Minister Narendra Modi to meet NCC cadets, tableau artists and tribal guests of Republic Day celebrations 2025 in New Delhi today.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय की शुरुआत की।
प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हिट स्ट्रीट्स टू गार्नर वोट्स एंड एज कैंपेनिंग इंटेंसिफाइज फॉर दिल्ली असेंबली पोल्स।
अमेरिका की संघीय न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जनजात नागरिकता को समाप्त करने के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगाई, इसे स्पष्ट रूप से असंवैधानिक बताया।
In Australian Open tennis, Alexander Zverev enters men's singles finals after Novak Djokovic retires mid-match due to injury. And now listeners, it's time for our segment Dateline India, and today, as I told you in the beginning of the program, today we will be talking about National Girl Child Day and International Day of Education, but we'll begin with National Girl Child Day.
बिल्कुल, सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय बालिका दिवस पर। हम एक माँ चाहते हैं, एक पत्नी चाहते हैं, एक बहन चाहते हैं, तो फिर हम एक बेटी क्यों नहीं चाहते?
Wonderful thought that is, Mukesh. And behind every successful society is a generation of empowered daughters. National Girl Child Day, which is celebrated every year on January 24 in India, is a significant occasion which is dedicated to highlight the rights, education and welfare of girls, our daughters.
बिल्कुल, महिला और बाल विकास मंत्रालय के 2008 में शुरू किए गए इस दिवस का उद्देश्य लड़कियों को सशक्त बनाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां वे लैंगिक भेदभाव की बाधाओं के बिना आगे बढ़ सकें।
Well, there's another reason why this day is special. This day also marks the anniversary of Prime Minister Narendra Modi's Beti Bachao, Beti Padhao, Save the Girl Child, Educate the Girl Child scheme, which was launched on January 22 in the year 2015.
Mahila aur Bal Vikas Mantralay 2025 mein ujjwal bhavishya ke liye ladkiyon ko sashakt banana vishay ke antargat is mahatvapurna avsar ko mana raha hai.
Well, this day is an opportunity, Mukesh, to raise awareness about the rights of girls and to also ensure that they are provided with equal opportunities and support, which is free from gender biases. This day also seeks to highlight the inequalities faced by girls, promote education for them, and encourage society to value and respect girls as equals.
बिल्कुल, मुख्य ध्यान लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने, कन्या भ्रूण हत्या जैसे मुद्दों का समाधान करने, घटते लैंगिक अनुपात के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लड़कियों के लिए अधिक समावेशी और न्यायसंगत वातावरण को बढ़ावा देने पर है।
Also, there are numerous reasons for ensuring the holistic growth of girls, which is crucial not only for their individual well-being, but also for the overall development, the overall advancement of our society. In particular, recognizing and upholding the rights and opportunities of girls is essential for building a more equitable future, which actually leads to the development of the society overall. These initiatives are designed to support and empower girls, ensuring their holistic development and their well-being.
बिल्कुल शगुन, बालिकाओं को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा के लिए कानूनी उपायों में कई प्रमुख पहल भी शामिल हैं। इनमें बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का उद्देश्य इसमें शामिल लोगों को दंडित करके बाल विवाह को समाप्त करना है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 बाल दुर्व्यवहार को समाप्त करता है। इसके कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए 2020 में अद्यतन नियमों के साथ किशोर न्याय अधिनियम 2015 जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। मिशन वात्सल्य लापता बच्चों की सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन और ट्रैक चाइल्ड पोर्टल जैसी सेवाओं के साथ बाल विकास और सुरक्षा पर केंद्रित है।
Now Mukesh, let me add a couple of points on this track child portal. This has been made functional since the year 2012. This portal facilitates the matching of missing children being reported at police stations with those found children who are residing in the child care institutions. Well, moving further, there are also the PM Cares for Children scheme supports children which were orphaned by the COVID-19 pandemic. Additionally, collaborations with NIMHANS and eSampark program provide mental health and medical care also.
बिल्कुल, ये प्रयास भारत में लड़कियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देते हुए एक सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस का उद्देश्य लड़कियों के साथ अक्सर होने वाले अन्याय को उजागर करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण तक समान पहुंच की वकालत करना है। ये दिन हर लड़की के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने और उनकी शिक्षा और समग्र कल्याण पर ध्यान देने के साथ उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर सुनिश्चित करने के महत्व की याद दिलाता है।
Well, this day also serves as a vital reminder of the importance of empowering girls and fostering an environment of equality and opportunity. Through various initiatives, other than that, policies and other awareness programs, the government is actively working to eliminate gender disparities, gender biases, promote education and also ensure the health and well-being of girls across the whole nation.
जी हाँ, ये प्रयास न केवल व्यक्तिगत जीवन का उत्थान करते हैं बल्कि एक अधिक समावेशी और प्रगतिशील समाज के निर्माण में भी योगदान देते हैं। प्रत्येक बालिका की क्षमता को पहचानना सभी के लिए एक उज्जवल और अधिक न्यायसंगत भविष्य को आकार देने की दिशा में एक कदम है। इसीलिए एक लड़की को शिक्षित करें, एक पीढ़ी को सशक्त बनाएं।
Yes, Mukesh, very rightly said. Let's build a world where every girl is free to dream and achieve. Here's wishing everybody happy National Girl Child Day. Now, moving on, let's talk about the second topic of our segment, 8 Line India. On this day, that is January 24, the world celebrates the International Day of Education under the theme AI and Human Agency.
जी हाँ, शिक्षा एक मानव अधिकार, एक सार्वजनिक भलाई और एक सार्वजनिक दायित्व है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका पर ध्यान देने के लिए 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया।
Well, without inclusive and equitable quality education and lifelong opportunities for all, countries will not succeed in achieving gender equality and also it won't be possible to break the cycle of poverty that is leaving millions of children, youth and adults behind. And this year, Mukesh, the focus is on how artificial intelligence, AI, which is very rightly so, how it is transforming education while maintaining human agency at its very core.
बिल्कुल, ये भारत के लिए शिक्षा को समावेशी और न्यायसंगत बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में वैश्विक नेतृत्व के रूप में अपनी प्रगति को प्रतिबिंबित करने का एक अवसर है।
Well, under the theme AI and Education, Preserving Human Agency in a World of Automation, the 2025 International Day of Education encourages reflections on the power of education to equip individuals and communities to navigate, to understand and to influence टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट।
और जैसे जैसे कंप्यूटर और एआई संचालित प्रणाली अधिक परिष्कृत होते जाते हैं, मानव इरादे और मशीन संचालित कार्रवाई के बीच की सीमाएं अक्सर धुंधली हो जाती हैं, जिससे तकनीकी प्रगति के युग में मानव एजेंसी को संरक्षित करने, फिर से परिभाषित करने और आदर्श रूप से उन्नत करने के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं।
Now allow me to quote UNESCO Director General Audrey Azoulay. AI, he said, AI offers major opportunities for education, provided that its deployment in schools is guided by clear ethical principles. To reach its full potential, this technology must complement the human and social dimensions of learning rather than replace them. It must become a tool at the service of teachers and pupils with the main objective to bring their autonomy and well-being. This was said by Audrey Azoulay, the UNESCO Director General.
बिल्कुल, शिक्षा का अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का एक हिस्सा है, जो निशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का आह्वान करता है। इसके अलावा 1989 में अपनाए गए बाल अधिकारों पर कन्वेंशन में कहा गया कि देशों को उच्च शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना चाहिए। जब संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे को अपनाया, तो 17 लक्ष्यों की सफलता के लिए शिक्षा को एक आवश्यक हिस्से के रूप में मान्यता दी गई।
Just last point, in particular, Sustainable Development Goal 4 aims to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by the year 2030. This has to be accomplished.
बिल्कुल, इसीलिए इस दिन का महत्व उत्सवों से कहीं अधिक है। ये सभी के लिए शिक्षा की पहुंच के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या कुछ विशेष है। तो इस क्रम में सबसे पहले हम गुजरात चलेंगे।
जी,
देश के पश्चिमी भाग में स्थित कच्छ जिला अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण विशेष है। हर साल लाखों पर्यटक तो कच्छ आते ही हैं, इसके अलावा लाखों की संख्या में विदेशी पक्षी भी कच्छ में सर्दियां व्यतीत करने आते हैं। तो सुनते हैं रिपोर्ट।
देश के पश्चिमी भाग में स्थित कच्छ जिला अपनी भौगोलिक परिस्थिति के कारण विशिष्ट है। हर साल लाखों पर्यटक तो कच्छ आते ही है, इसके अलावा लाखों की संख्या में विदेशी पक्षी भी कच्छ में सर्दियां बिताते हैं। कठोर सर्दियों से बचने के लिए साइबेरिया और पूर्व यूरोप के आसपास के क्षेत्रों के अलावा मध्य पूर्व एशिया से पलायन करके पक्षियों की कई प्रजातियां अनुकूल जलवायु की तलाश में कच्छ आती है। कच्छ का प्राकृतिक सौंदर्य और वातावरण उन्हें यहां आकर्षित करता है। कच्छ मध्य एशिया के प्रवासी पक्षियों के लिए फ्लाईवे भी माना जाता है। पश्चिम कच्छ वन विभाग के उप वन संरक्षक युवराज सिंह झाला ने आकाशवाणी को बताया कि कच्छ में रण, समुद्र, पहाड़ियां और घास के मैदानों के साथ साथ कंटीले जंगल, मैंग्रोव और वेटलैंड्स की मौजूदगी की वजह से विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में यह पक्षी आश्रय लेते हैं।
यहाँ की जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ही रिच है। कच्छ के जो अलग अलग भौगोलिक प्रदेश है, उसमें रण के साथ साथ पर्वतीय विस्तार है, उसके साथ साथ यहाँ पे ग्रासलैंड जो घास के मैदान बोलते हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत अच्छे अच्छे पानी के भराव वाला क्षेत्र जिसको वेटलैंड बोलते हैं वो भी कच्छ में मौजूद है। गुजरात राज्य का सबसे लंबा कोस्टल एरिया वो भी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके साथ ही भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मैंग्रोव विस्तार भी कच्छ में है। ये सब रीजंस की वजह से कच्छ अलग अलग प्रकार की बायोडाइवर्सिटी के महत्वपूर्ण स्थान में से एक है। बर्ड्स के लिए कच्छ बहुत ही सुरक्षित और अनुकूल निवास स्थान है।
फ्लेमिंगो, साइबेरियाई क्रेन, पेलिकन समेत दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां यहां आती हैं। श्री ने कहा कि ये माइग्रेटरी पक्षी कच्छ में 3 से 4 महीने बिताते हैं। स्थानीय पक्षी भी बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में आते हैं, जिससे जैव विविधता भी समृद्ध होती है।
वो यहाँ के जो इकोसिस्टम से खुराक लेके अपने जीवन चक्र का 3 से 4 महीना हर साल यहाँ पे गुजारते हैं। यहाँ कच्छ में जो बर्ड्स आते हैं उसके साथ साथ कच्छ की डिफरेंट इकोसिस्टम की वजह से यहाँ के जो स्थानिक जो बर्ड्स है वो भी बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है। उसके साथ साथ जो पैसेज माइग्रेंट है जो एक स्थल से दूसरे जगह पे माइग्रेट करते हैं तो कुछ समय के लिए वो कच्छ को अपना निवास स्थान बनाते हैं। साथ ही साथ एशिया की सबसे बड़ी फ्लेमिंगो की ब्रीडिंग कॉलोनी भी कच्छ में पाई जाती है।
इस बार भी कच्छ के रण के विभिन्न इलाकों में बड़ी संख्या में विदेशी पक्षियों के झुंड देखने को मिल रहे हैं और खूबसूरत एवं मनोरम दृश्य बन रहे हैं, जिसके चलते विभिन्न पक्षी दर्शन स्थल भी विकसित हुए हैं। परिक्रमा के लिए भूज से अशरफ नथवानी।
Now, Mukesh, let's take our listeners to Puducherry. where the Southern India Science Fair 2025 is currently underway. This presents a dazzling array of innovative ideas from schools across South India, with 210 exhibits exploring the theme Science and Technology for a Sustainable Future. The fair is a melting pot of creativity and problem solving. We have more on this from our correspondent.
Students and teachers from across South India have come together at the fair showcasing remarkable innovations that tackle global challenges and everyday needs. An Exploration 2.0 exhibit from students of Kerala presents an ambitious vision of colonizing celestial bodies. Their concept of turning the moon into a refueling station for interplanetary travel sparks futuristic imaginations. Complementing these are stalls on India's hallmark space missions Gaganyaan and Chandrayaan, contributed by schools from various states. Such exhibits offer visitors a glimpse into the nation's advancements in space exploration. Closer to home, Puducherry students, inspired by the Wayanad landslide tragedy, have exhibited an early warning system for landslides. Sustainability takes center stage at the fair, with students displaying models of solar-powered trackless semi-magnetic metro, a footstep electricity generator, and a solar-powered hybrid bicycle that combines green energy with functionality. Teachers too have stepped into the spotlight with models such as coir dust power plant, a paper pulp making machine, and demonstrations of DNA extraction from plants, along with a bamboo toy-based environmental science pedagogy. Exhibits celebrating biology and environmental science are also captivating visitors in the fair. Puducherry Health Department's National Oral Health Program stall and a dengue awareness stall by Tamil Nadu students highlighting mosquito life cycles stand out for their educational value. Meanwhile, creative ideas like a smart pet feeder controlled via mobile phones and an anti-slip alarm for drivers showcased real-world applications. Sculptures made from discarded materials like bicycle tubes and shoe soles add an artistic flair to the scientific celebration. In a world driven by smart technology, students make their mark with innovative working models such as solar-powered emergency power bank, smart gun security system, smart helmet, automatic toilet cleaning system, and smart iron box. The exhibition will conclude tomorrow. For Parikrama, this is Bibinasnath, Akashwani News, Puducherry.
Akashwani and Doordarshan are fully geared up for the live coverage of the 76th Republic Day Parade from Kartavya Path on 26th January. The live coverage will be broadcast and telecast across the entire network of Akashwani and Doordarshan, along with the Waves OTT platform. To review the preparedness at Kartavya Path, Secretary of Information and Broadcasting Sanjay Raju today took stock of the arrangements made by Akashwani and Doordarshan for the live coverage. Mr. Jaju lauded the efforts of the Akashwani and Doordarshan teams, saying that everyone is working to ensure the telecast and broadcast of this important national event. He said that cameras and optical fiber lines have been set up to ensure uninterrupted broadcast of the Republic Day Parade. Prasar Bharati CEO Gaurav Dwivedi said that this time 4K cameras have been deployed to ensure high quality picture resolution, which is 8 times better than before. He also mentioned that the parade will be broadcast on the Waves OTT platform.
So one of the things that we are doing this year on the Doordarshan coverage is that we are deploying full 4K cameras. For the last 10 years, we had been doing an HD coverage. But now, in terms of the picture quality, this is going to be about 8 times better compared to previous years, compared to the HD resolution. The Waves that we have launched recently will also be broadcasting the parade live. But in addition to that, there are also some programs that we have compiled from our archives. The previous parades and previous years where the Honorable President had taken the salute. So some very interesting stories and facts from the previous year's parades are also being compiled into programs which will be available for digital audiences on the Waves. The Akashwani team is also completely on the ball. They cover the commentary in English and Hindi, and it will be relayed across our national network, across all our stations.
राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने के सरकार के प्रयास के अंतर्गत 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए लगभग 10,000 मेहमान विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। विशेष आमंत्रितों में दुर्घटना निवारण और आपदा सहायता, आपदा मित्र स्वयंसेवक, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, किसान उत्पादक संगठन FPO, पीएम किसान सम्मान निधि लाभार्थी, माई भारत स्वयंसेवक और अन्य लोग शामिल हैं। इन स्वयंसेवकों और लाभार्थियों को शामिल करना सार्वजनिक सेवा और सुरक्षा के लिए समर्पित व्यक्तियों के योगदान को स्वीकार करने और सम्मानित करने के सरकार के प्रयास को दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली के पांडव नगर के आपदा मित्र स्वयंसेवक पंकज दास ने कहा कि ये उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा क्षण है।
अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, वो भी रजौरी गार्डन में। उसमें आग एकदम से फैल रही थी और फिर बार बार बुझ रही थी, फिर फैल रही थी। उसमें बड़े बड़े विभागों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कैसे करे। फिर किसी तरह आग बुझाई हमने। हर क्षेत्र में आपदा मित्र है, तो मैं खुद प्रमोट करता हूँ आपदा मित्र को। तो अगर इस तरह की एक्टिविटी अगर दूसरे आपदा मित्र भी करे तो वो उनसे हर कोई टाई अप में रह सकते है, चाहे वो RWS हो, चाहे एक नॉर्मल इंसान हो, कोई भी। मैं खुद वीडियो बनाता हूँ और वीडियो बना बना के हर ग्रुप में डालता हूँ ताकि मैं लोगों को अवेयर कर सकूँ कि हाँ, अगर कोई डिपार्टमेंट नहीं होता तो आपदा मित्र आपकी मदद के लिए है।
इस बीच उत्तरी जिले की आशा कार्यकर्ता नीलम ने कार्यकर्ताओं को उनके योगदान के लिए आवश्यक मान्यता देने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया।
सर बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे प्रधानमंत्री से आमने सामने देखने का मौका मिलेगा सर। जैसे कि हम मोटिवेट करते हैं सभी को, लेकिन हर चीज को इनको हमारे बारे में किसी को पता नहीं होता सर। तो इसलिए हमें उनको ये बताना है कि आशा वर्की भी एक हम ही समाज का एक हिस्सा होते हैं, जो जैसे कि हम आप महिलाओं की मदद करते हैं, जैसे डिलीवरी वगैरह करवाते हैं, जैसे कोई भी बुजुर्ग होता है उसकी हम हेल्प करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है सर ऐसा हेल्प करना।
ये कार्यकर्ता और स्वयंसेवक आपदा प्रतिक्रिया से लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य तक समाज की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें सुर्खियों में लाकर उनके योगदान की सराहना की जा रही है और जागरूकता बढ़ाई जा रही है। और महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस वर्ष अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस उपलक्ष्य में महाराष्ट्र की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत के संवर्धन के साथ ही उनके प्रचार प्रसार के लिए कॉरपोरेशन की ओर से कई उपक्रम चलाए जा रहे हैं। कॉरपोरेशन के छत्रपति संभाजी नगर के क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक हरणे ने इस बारे में और अधिक जानकारी दी।
छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि महाराष्ट्र के पर्यटन इतिहास में एक नया और रोमांचक अध्याय लिखने वाला महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल इस साल अपनी स्थापना के वर्ष पूरे कर रहा है। 1975 में स्थापित MTDC ने महाराष्ट्र में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन 50 वर्षों की यात्रा के दौरान MTDC ने राज्य के विभिन्न प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों का संरक्षण और प्रचार प्रसार किया है। वैश्विक स्तर पर महाराष्ट्र को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए करने का कार्य महाराष्ट्र MTDC ने सफलतापूर्वक किया है। स्वर्ण महोत्सवी वर्ष के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और पर्यटकों के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएगी। इनमें महाराष्ट्र की समृद्ध पर्यटन विरासत को प्रदर्शित करने वाले उपक्रम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार अभियान और स्थानीय समुदायों के साथ साझेदारी में पर्यटन विकास शामिल होंगे। यह स्वर्ण महोत्सवी वर्ष हमारे लिए गर्व और नए संकल्पों का समय है। महाराष्ट्र को विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे।
और शगुन, खेल की मैदान की भी जानकारी अपने श्रोताओं को दे दें।
जी मुकेश, लेट्स फोकस ऑन टेनिस फर्स्ट। इन ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस, सेकंड सीड जर्मन अलेक्जेंडर स्वेरेव हैज एडवांस्ड टू द मेन्स सिंगल्स फाइनल आफ्टर सेवेंथ सीड नोवाक जोकोविच रिटायर्ड ड्यूरिंग देयर सेमी फाइनल मैच एट द रॉड लावेर अरेना इन मेलबर्न टुडे। इन अ शॉकिंग मूव, द 10-time ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन जोकोविच वॉज फोर्स्ड टू रिटायर ड्यू टू एन इंजरी आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट सेट।
बिल्कुल। और हॉकी इंडिया लीग के बारे में, आज महिला वर्ग में JSW सूरमा हॉकी क्लब का मुकाबला सांची राड बंगाल टाइगर्स से होगा। पुरुष वर्ग में सांची राड बंगाल टाइगर्स और वेदांत कलिंगा लांसर्स की टीम आमने सामने होंगी। और व्यापार जगत में क्या हालचाल है?
जी, लेट्स फोकस ऑन द हैपनिंग्स ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। द बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस टुडे एंडेड वीक्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन विद लॉसेस, स्नैपिंग इट्स 2-day गेनिंग स्ट्रीक। द 30 शेयर इंडेक्स एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स शेयर 330 पॉइंट्स और 0.43% टू क्लोज एट 76,190। Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 fell 113 points, almost 0.5%, to settle at 23,092. And now, listeners, we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
We remember freedom fighter and commander of Azad Hind Fauj, Captain Shahnawaz Khan, who was born on 24 January 1914.
Shahnawaz rose to the rank of the captain in the 14th Punjab Regiment during the Second World War and was captured by the Japanese after the fall of Singapore in 1942. He was profoundly influenced by Subhash Chandra Bose's speeches asking captured Indian soldiers to join the Indian National Army and to fight for a free India. Shahnawaz led the Indian National Army into northeastern India, claiming Kohima and Imphal, which were held briefly by the Azad Hind Fauj during the Second World War. In December 1944, Shahnawaz Khan was appointed commander of the 1st Division at Mandalay.
After the war, the INA officers Prem Kumar Sehgal, Shahnawaz Khan and Gurbakhsh Singh Dhillon were tried for waging war against the King Emperor in a public court-martial at the Red Fort in Delhi. Despite the stirring defense put forward by Congressman Bhula Bhai Desai, who was Chief Defense Counsel, the court found the three commanders of INA guilty of treason and sentenced to death. The sentence was committed by the Commander-in-Chief of the Indian Army following unrest and protests in India.
After the trial, Khan declared that he would henceforth follow the path of non-violence espoused by Mahatma Gandhi and join the Congress Party. In 1946, Shahnawaz Khan accompanied Mahatma Gandhi and Khan Abdul Ghaffar Khan to restore peace in Noakhali. After independence, Khan had an illustrious parliamentary career and was elected 4 times to the Lok Sabha from Meerut constituency. He died on 9th of December 1983. We salute the great Indian nationalist.
और अब याद कर लेते हैं उन महान हस्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि है. तो शगुन किससे शुरू करेंगे?
जी, फर्स्ट मुकेश, वील टॉक अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ अ विजनरी साइंटिस्ट, अ मैन हु थ्रू आउट हिज लाइफ डोमिनेटेड बोथ द साइंटिफिक एंड पॉलिसी स्फेयर्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर अफेयर्स. First bringing the Indian nuclear program to life and then setting its priorities and direction. Well, I am talking about Dr. Homi J. Bhabha, nuclear physicist and full credit for the establishment of India's nuclear research program. And the nuclear program must be given to him.
और अब हम याद कर रहे हैं महान शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी को. किराना घराने से वो संबंध रखते थे. उन्होंने 19 साल की उम्र से ही गायन शुरू किया था और वे 7 दशकों तक शास्त्रीय गायन करते रहे. पंडित भीमसेन जोशी ने कर्नाटक को गौरवान्वित किया. उनकी योग्यता का आधार उनकी महान संगीत साधना है.
Singer. He's also an actor and television and radio host, Albert Gordon McRae. He played the leading man opposite Doris Day in On Moonlight Bay and the sequel By the Light of the Silvery Moon. And well, the music speaks for the musician itself. And listeners, you are listening to this particular song, Stranger in Paradise.
I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring.
आज जन्मदिन है हिंदी फिल्मों के प्रख्यात निर्माता निर्देशक सुभाष घई का. बॉलीवुड में सुभाष घई को एक ऐसे फिल्मकार के तौर पर शुमार किया जाता है जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए राज कपूर के बाद दूसरे शोमैन के रूप में दर्शकों के दिलों पर खास पहचान बनाई है. और उनकी फिल्में जो हैं उनमें कालीचरण, विश्वनाथ, कर्ज, विधाता, कर्मा, हीरो, कितनी ही ऐसी फिल्में हैं जो आज तक लोगों के दिलों दिमाग पर छाई हुई हैं. तो क्यों ना उनकी फिल्मों के गाने सुने.
एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र, क्या समा, क्या जमाना था.
Hey!
Well, Subhash Ghai's movies are synonymous with musical brilliance. What makes his music so special is its ability to evoke emotions and complement his grand narratives.
बिल्कुल श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और शगुन चोपड़ा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की. नमस्कार.